أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آج کے اس دن میں جو بھی حصہ قرآن پاک کا پڑھیں سمجھیں اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. پیغام قرآن کے سلسلے میں آج ہم پارہ نمبر 4 جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے شروع ہوتا ہے یہاں سے شروع کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے اس بارے میں کیا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لن تنالوا البر. اس نام سے یہ پارہ. حقیقت یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں امت وسط کو کچھ من پسند چیزوں کے چھوڑنے کا حکم ہے, اور پورے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے اس دین یعنی اسلام کو غالب کرنے کی کوشش ہے. چوتھا پارہ چوتھی سیڑھی ہے, ہم نے اس پہ چڑھتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. تو سورۃ آل عمران کا یہ حصہ جس کو ہم پیچھے سے کنٹینیو اگر کریں تو پچھلے پارے کی آخری آیت میں تھا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین بھر کے سونا پیش کریں گے کہ اس کو فدیے میں لے لیا جائے اور ہمیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لیا جائے, لیکن ان کی مدد نہیں کی جائے گی کیونکہ مال خرچ کرنے کا وقت دنیا تھی, اللہ کا حکم ماننے کی جگہ دنیا تھی. تو آپ نے, میں نے اس آیت کو اس سوچ کے ساتھ سننا ہے کہ ہم بہت سارے دعوے کرتے ہیں, بعض دفعہ اپنی زبان سے, بعض دفعہ اشعار کی صورت میں, بعض دفعہ نعتوں کی صورت میں, لیکن بات تو یہ ہے کہ عمل سے اس کی گواہی دی جائے. اگر ہم سورۃ آل عمران کا جائزہ لیں تو آیت نمبر 92, نیکی کا مظہر اول, کیا محبوب شے کا انفاق. یعنی واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکی لیں تو اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ آپ اپنی من پسند چیز کو خرچ کر دیں. آگے ہم انشاءاللہ ہدایات والے حصے میں ان کی ڈیٹیلز لیں گے. اس وقت میں آپ کو ان آیات کے ٹاپکس بتانا چاہوں گی تاکہ اپنی پسند کا ٹاپک اس کا نمبر نوٹ کریں اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیٹیل سے سنیں. اس وقت مقصد ڈیٹیلز نہیں ہے, اشارے مقصود ہیں. ہم قرآن پاک کو تراویح میں بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح اپنی تلاوت میں بھی, لیکن اگر اسی طرح ہمارے پاس ہر پارے کا ایک خلاصہ ہو تو یقینی بات ہے کہ کم از کم قرآن پاک پڑھنے اور سننے کے دوران ہماری توجہ اس پڑھے ہوئے اور سنے ہوئے حصے میں ہوگی. اور بات بھی یہی ہے, ایون اس وقت بھی اگر آپ میری آواز صرف سن رہے ہیں لیکن میری بات نہیں سن رہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کسی اور لینگویج میں بولنے والے شخص کی ہمیں بات نہیں سمجھ آتی, ہاں آواز کانوں سے ٹکراتی ہے. افسوس کی بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت قرآن ایسے ہی پڑھتی ہے, یا ان کو اپنی آواز آتی ہے یا دوسرے کی, لیکن اس میں کہا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر غور و فکر نہیں ہو پاتا. تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہمیں قرآن دوست بنائیں گی, قرآن فہمی کے راستے میں یہ چیزیں بہت مددگار ہوں گی. تو آیت 92 میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر آپ واقعی نیکی کا ارادہ کرتے ہو, جنت چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, تو اس کا پہلا اظہار ہے کہ اپنی من پسند چیز کو خرچ کر دو, کیونکہ جب تک راستے میں رکاوٹیں رہتی ہیں بات سمجھ نہیں آتی. اور بہت سارے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر کیوں نہیں پاتے, وہ من پسند چیزیں, ہرڈل ریس ہے یہ دنیا. رکاوٹوں کو دور کرتے جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کی طرف مائل کرتا جائے گا. اور یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں, کہنے کی نہیں, کر کے دکھانے کی باتیں. جو محبت کرتے ہیں نا وہ صرف باتوں سے نہیں کرتے, وہ کر کے دکھا دیتے ہیں, پھر بات میں جوگا دیکھی جائے گی. پھر اسی طرح آیت نمبر 93 سے 95 کا ٹاپک لکھیے, من گھڑت بات. اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے. جو دل میں آیا کہہ دیا, ایسی باتیں کر دیں, خواب اللہ کے نام پہ پیش کر دیے اور ایسی ایگزیجوریشن کے ساتھ باتیں کرنی اور یہ کہنا اللہ نے کہا ہے حالانکہ اس نے نہ کہا. جب علم تھوڑا ہوتا ہے تو انسان ادھر ادھر کی باتوں کو بھی اللہ کی بات بنا کے پیش کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے, ایسا کہنے والا کسی پہ ظلم نہیں کرتا سوائے اپنے. آیت 96 سے 97 میں عظمت کعبہ اور فرضیت حج کا ذکر ہے, کیونکہ جہاں بھی بات ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی تو وہاں پھر کعبہ اور حج کی بات ضرور ہوگی, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ حج کرنا فرض ہے. پھر آیت نمبر 98 سے 101, اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی کا تذکرہ ہے. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے بار بار قرآن پاک میں؟ تاکہ اپنی حفاظت کرو اپنے آپ کو. پھر اس کے بعد 102 سے 104, فوز و فلاح کے لیے تین نکاتی لائحہ عمل. तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो फिर इसके बाद तुम्हें तीन चीज़ों पे गौर व फिक्र करना होगा और उस पे फिर अमल भी करना होगा, और अल्लाह करे कि हम कर पाए। तकवा भी इख्तियार करना पड़ेगा और मरते दम तक मुसलमान भी रहना पड़ेगा। फिर आयत नंबर 105 से 109, 105 to 109, रोज़े क़यामत कुछ चेहरे रोशन और कुछ चेहरे स्याह होंगे। अब ये कौन से होंगे जो ज़िंदगी को एक मकसद के साथ गुजार के गए होंगे? वो तो रोशन चेहरे वाले होंगे। उर्दू में भी आप बोलते हैं कि रूहे रोशन, पेश रो। बिल्कुल, काम करने के बाद जो थकन होती है ना, वो भी मज़े की होती है। उस आराम की निस्बत ये बहुत प्यारी है जिसमें आप सारा दिन बस आराम करते रहे लेकिन बाद में काम ना हुआ। तो क़यामत के दिन वो लोग सुरखरू हो जाएंगे जिनको जो काम दिया था। और ख़ास तौर पर याद रखिए कि चौथा पारा उम्मत वसत के मौजूदा मसाइल और उनका हल है। तो आज मुझे आपको इस पे गौर करना है। फिर आयत नंबर 110, मकसद उम्मत, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। हर काम का एक मकसद होता है ना। आप घर में एक मेज़ भी लाते हैं तो उसका भी कोई पर्पस, कोई मकसद होता है। तो इस उम्मत को पैदा करने का मकसद क्या था? कि दुनिया से गंदगी और ख़राबी ख़त्म हो जाए। तत्हीर का काम लेना था अल्लाह ने हमसे। आयत 111 से 112, उम्मत जलील और रुस्वा क्यों होती है? और साफ बात है कि जब इंसान मकसद को छोड़कर, जो काम उस पर डाला उसको छोड़कर सिर्फ आराम पसंद ही हो जाए और खाने पीने का हरीस हो जाए, तो फिर ये बात तो रोज़े रोशन की तरह वाज़े ही हो जाती है। आयत नंबर 113 to 115, जलीलो रुस्वा उम्मत में भी सालेहीन का गिरोह होता है। यानी बिगड़े से बिगड़े दौर में भी मुसलमानों का एक गिरोह हक पे रहता है और लोगों को हक की दावत देता है। दुआ कीजिए कि हमारा शुमार उन्हीं लोगों में हो जाए। आज तक अगर नहीं है तो आने वाले दिनों में अल्लाह हमें बेहतर कर दे और हम साहिबे इस्लाह बन जाएं। फिर आयत नंबर 116 से 120, अहले किताब दुश्मन हैं, इनसे दिली दोस्ती मत करो। देखिए, माँ भी अपने बच्चे को केयरफुल एटीट्यूड सिखाती है। अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला ही हैं। वो दोस्त दुश्मन का फ़र्क ना बताते तो शायद हमें कभी पता भी ना चलता। फिर आयत 121 से 127, अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत की बशारत, यानी तुम कोशिश करो, बाकी काम मैं कर दूंगा वाला स्टाइल। फिर आयत 128 to 129, हिदायत देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। हम दुआ कर सकते हैं लोगों के लिए कि अल्लाह ताला उसको और मुझे भी हिदायत पे कायम रख, लेकिन बात में मिले कि ना मिले, इसका इन्हिसार एक तो अल्लाह ताला की ज़ात पे है, दूसरा उसके लिए जिसके लिए आपने दुआ की। तो वो जब चाहेगा तो अल्लाह ताला उसको हिदायत ज़रूर देगा। आयत 130 130, सूदे मुरक्कब की हुरमत, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल पिछले पारे पहले से लेकर इशारतन तो वहाँ माल की मोहब्बत की बातें थी, लेकिन सूद का तस्करा आता ही जा रहा है। फिर 131 to 133, अहले ईमान के लिए कीमती हिदायत, क्या करना और क्या नहीं करना। 134 to 136, मुत्तकी कौन है। 137 से 138, हसूले हिदायत के दो ज़राए, एक है तारीख से इबरत लेना और एक है आयात कुरानी से फैज़ पाना। आयत 139, मुसलमानों का उरूज ईमान से मशरूत है। वन तुमलाउ नाइन कुन तुम मोमिन, अल्लाह ताला हमें ईमान दे दे ताकि दुनिया में मुसलमान गालिब आ जाए। आयत 140 से 143, अहले ईमान हिम्मत ना हारें। वला तहिनो, क्यों हिम्मत हारते हो? जिसके साथ अल्लाह की मदद हो वो क्यों हिम्मत हारे? आयत 144, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन से वाबस्तगी रखो। बस ये कर लीजिए, ये भूला हुआ सबक है उम्मत को, ये याद दिलाना है और याद रखना है। आयत 145, मौत का वक्त तय शुदा है तो मौत से बचने की बजाय उसके बाद के लिए तैयारी कर लो। 146 से 148, अल्लाह वाले अल्लाह की राह में जंग करते हैं। 149 to 151, काफिरों का मिशन मुसलमानों को ईमान की दौलत से महरूम करना। 152, नज़्म की खिलाफ वर्जी फतह शिकस्त में बदल गई, यानी जब ऑर्गेनाइज्ड ना रहे, भगदड़ मच गई तो अल्लाह ने फतह को शिकस्त में बदल दिया। आयत 153, मुश्किलात पर मुश्किलात की हिकमत, यानी अभी पहले गम से कमर सीधी ना हो तो बाज़ औक़ात दूसरा गम क्यों पड़ जाता है। 154, मौत का वक्त ही नहीं जगह भी तय है, अब क्या करेंगे इससे फिर बचने का इंसान। आयत 155, बुजदिली गुनाहों की वजह से पैदा होती है। अगर हर जुमले पे आप एक क्वेश्चन मार्क रख लेना तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको सिर्फ आयतों के टाइटल से ही समझ आ जाएंगी। फिर 156 से 158 अल्लाह के रास्ते की मौत दुनिया व माफी हा से बेहतर हैं और अल्लाह हमें अपने रास्तों में खपा दे। 159 अमीर जमात के लिए हिदायत यानी लीडरशिप के मनसब पे फ़ायज़ लोग, ज़िम्मेदारान के मनसब पे फ़ायज़ीन को क्या करना चाहिए। आयत 160 फैसला कुन चीज़ अल्लाह की मदद है। और 161 से 163 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और इखलास मुसल्लम है, यानी अल्लाह ताला ने आपको ये नेमतें अता की थी। 164 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालेहीन की जमात कैसे तैयार की, तरबियत के खूबसूरत नुक्ते। टीम बनाना आसान काम नहीं, अल्लाह की मदद के बाद खून पसीना एक करना है। 165 से 168 उहद में शिकस्त की वजह और हिकमत। 169 से 171 शुहदा के लिए इनामात। और 172 से 178 बस ये तो हैरान ही कर देती हैं आयते बंदे को कि ज़ख्मों से चूर सहाबा कराम की जुर्रत और बहादुरी, यानी अभी पहली जंग से फारिग नहीं हुए पूरी तरह और दूसरी के लिए तैयार, एक काम ख़त्म नहीं तो दूसरी के लिए तैयार। और ये तरबियत मैदान अमल में ही आती है, टीम वर्क के ही ये तोहफे होते हैं। टीम में इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं चल सकते, वो कहते हैं हमें अपनी मर्जी चाहिए, आई एम एट माई ओन। साहब इकराम ऐसे नहीं थे, सर उठाकर उन्होंने इधर से उधर जाकर फतवे देने या तलवारें चलानी नहीं शुरू की थी। फिर आए 179 आजमाइश मोमिन और मुनाफिक को जुदा कर देती है, यानी एक फैसला होता है आजमाइश के बाद कि लोग अलग अलग हो जाते हैं, जुदा कर दिए जाते हैं, जुदाई का पैगाम है आजमाइश। आयत 180 रोज़े क़यामत बुखल गले का तौक होगा। बुखल हकीकत में तौक ही होता है, दिल ही नहीं खुलता इंसान का। 181 टू 184 यहूद की गुस्ताखियाँ और झूठ। 185 असल कामयाबी जहन्नुम से निजात है। 186 अल्लाह की राह में तकलीफ दे उमूर आते ही रहेंगे। 187 अहले किताब की अल्लाह की किताब से बेवफाई। 188 से 189 तारीफ़ो तहसीन की ख्वाहिश अजाब से दो चार कर देगी, यानी करा कराया कुछ भी नहीं, तारीफ़ें दिल जाता है हमारी ही हों, ये नहीं करना। 190 कायनात की तख्लीक पे गौर अल्लाह की मार्फत के हसूल का ज़रिया। 191 से 192 सलूके कुरानी ज़िक्र फ़िक्र, यानी कुरान के साथ ताल्लुक़ रखिए तो ज़िक्र का और फ़िक्र का। 193 टू 194 तकमीले ईमान और ईमान अफरोज दुआएं, और ये भी लिख लीजिए कि सूरत आले इमरान में बहुत सारी दुआएं आती हैं, हत्ता कि इसकी आखिरी आयतें भी दुआओं से भरी हुई हैं। 195 कबूलियत दुआ का वादा। 196 टू 198 काफिरों की सरगर्मियों का असर ना लो। 199 अहले किताब में भी सालेहीन हैं। और 200 फलाहे उखरवी के लिए चार हिदायत, इस बिरु वसा बिरु वरा बितु वत्तकुल्लाह। तो ये थी सूरत आल इमरान की नायात की एक तरतीब टॉपिक्स के अतबार से। आइए ज़रा अब इस हिस्से में से चंद हिदायत अपने लिए लेते हैं। ये है असल में वो चीज़ें जिसको हमने इस सेशन से अपने अमल के लिए पिक करना है। सबसे पहली हिदायत इस पैगाम कुरान में, मोहब्बत के आगे मजबूर होते हुए महबूब के लिए महबूब तरीन चीज़ छोड़ दो। लन तनालु البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم। मोमिनो जब तक तुम इन चीज़ों में से जो तुम्हें अजीज हैं राह अल्लाह में सर्फ ना करोगे, कभी नेकी हासिल ना कर सकोगे, और जो चीज़ तुम सर्फ करोगे अल्लाह इसको जानता है। पहली आयत पारे की और आल इमरान की 92 आयत आपसे मुझसे मांगती है अपनी मोहब्बतों की कुर्बानियाँ दो। नेकी में कमाल के लिए महबूब तरीन चीज़ की कुर्बानी की ज़रूरत है। कभी कहा वो दे दो जो ज़रूरत से ज़ायद हो, ये आम हालात की बात होती है, लेकिन कभी तो अपनी मनपसंद चीज़ भी दो। पूछिए आपको क्या पसंद है। सबसे पहले इंसान को अपना नफ्स पसंद होता है, अपनी अना पसंद होती है, अपनी जान पसंद होती है, अपना माल, अपना वक्त, अपनी नींद, ये सब देना पड़ेगा। दीन के पौधे पे बहार आएगी नहीं जब तक उम्मते मुस्लिमा ये कुर्बानियां ना देगी। आज सोचिए आप क्या देंगे। आज का लॉकडाउन के दिन है, कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे मौके हमारे सामने पेश कर दिए कि जिस पे अमल करके हम अपनी ज़कात, अपने सदकात भी मुस्तहकीन तक पहुंचा सकते हैं। तो तहदीस नेमत के तौर पे अल्लाह ताला का एहसान समझते हुए एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। बाद में आपके साथ वो फ्लायर और प्रोजेक्ट शेयर भी किया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में हर तरफ ही गरीब गुरबा परेशान हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो दिन रात में काम करके माल कमाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नूरुल कुरान प्लेटफॉर्म वालों को इस बात की तौफीक दी है कि हम भी इस नेकी में हिस्सा डाल सकें। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट सामने आए अमूमन तालीम और तालुम के लिए थे, इल्म के लिए थे, जिसमें हमारा ऑनगोइंग चल रहा है जौहराबाद का प्रोजेक्ट, वो तो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त हालात और वक्त की ज़रूरत के तहत हम लोग इंशाल्लाह रमज़ान राशन फंड के नाम पर एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के एहसास के साथ। आप इसकी डिटेल्स बाद में वेब पेज से ले सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम मुसलमानों को रमज़ान में माल खर्च करने के लिए वो गरीब गुरबा, वो होमलेस लोग जो सिर्फ मिर्चें खरीद के जाते हैं, हमारी अपनी एक एडमिन की आंखों देखी बात जो उन्होंने शेयर की कि कोई ग्रोसरी लेने गई और एक बूढ़ा बाबा पीछे खड़ा है, और जब उसकी बारी आई तो सिर्फ एक मिर्चों का पैकेट उसके हाथ में था। शायद पैसे ही इतने थे और समझ नहीं आ रही होगी कि क्या लूँ। तो हमारे कल्चर में तो नमक घर में शायद हो और उसमें मिर्चें डाल के पानी में पका के बच्चों को खिला दें। कभी हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करके देखो अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों तक पहुँचने वाला बनाए, ख़ास तौर पर वो लोग जो शर्म की वजह से दूसरों से मांगते भी नहीं हैं। फिर आयत 97, फ़र्ज़ियत हज, फ़ी ही आयातुम बैयिनातुम मुकामु इब्राहिम, इसमें एक पैगाम दिया गया, वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत। क्या पता चला कि अल्लाह के लिए हज करना है लोगों ने उस घर का। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इसकी इस्तताअत रखे। क्या पता चला कि हज फर्ज है। फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक हज है। शुक्र है कि पूरी जिंदगी में एक ही दफा है। अगर रमज़ान की तरह हज भी हर साल फर्ज होता तो फिर सोचिए कि क्या करते। और जो इस हुक्म को ना माने तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। और बात यह है कि जिससे मोहब्बत होती है उसके घर जाने को दिल करता है, जिसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं वो तो करीब रह कर भी ना जाए। और कितनी दूर चले गए और हर साल अपने मुल्कों में जाते आते उधर से गुजरें भी, लेकिन हज ना मिल सके। तो नियत कीजिए अपनी पहली फुर्सत में हज और उम्रे का एहतमाम करना है। तो इस्तेताद के बावजूद हज ना करना ये अमली तौर पर कुफर है। इसी तरह 103, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान, इसको थामना है। व तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और मुतफरिक ना होना। क्या पता चला कि फिरकों में बटी हुई कौम एक रस्सी को पकड़ेगी तो सामने उसके एक दूसरे के अपने मुसलमान भाई बहन ही आएंगे। कुरान को थामने से मुराद इसके हकूक़ को अदा करना है। कुरान पाक के हकूक़ क्या हैं, इस पर ईमान लाना, इसकी तिलावत करना, इसको समझना, अमल करना और फैलाना, और कुरान को थामने की बरकात को हासिल करना। लअल्लकुम तहतदून, अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि इस रमज़ान में वाकई उम्मत मुस्लिमा जुड़ जाए, क्योंकि आजकल गम सबका एक ही है ना। लॉकडाउन तो सबके लिए है, करोना का अंदेशा तो हर एक को लगा हुआ है। तो आइए सब मिलते हैं, फिरकों को छोड़िए, जमातों गिरोहों को अपने प्लेटफॉर्म बनाइए। कोई हरज की बात नहीं, आप किसी भी जगह काम करें, लेकिन गाइडलाइन एक है, हेड ऑफिस एक है। दीन फैलता जाएगा और माशरे के अंधेरे दूर होते जाएंगे। दिल की तरह काम कीजिए कि जो बड़ी पाइप्स को जिस्म में फैलाने के बाद उंगलियों में बारीक बारीक आर्टरीज और वेन्स की सूरत में ब्लड पहुंचाता है। हम अगर एक छोटी सी वेन ही सही उंगली में चले जाएं, दो लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन हमने कभी कंपटीशन अपना उन लोगों से नहीं करना जिनको हज़ारों और लाखों के मजमू में बात का मौका मिलता है। शर्त एक है, पीछे से पंप एक हो। दिल दो कर दीजिए, देखिए क्या गड़बड़ होती है। हमारे जिस्म का मिजाज इज्तमाईयत का है, टीम वर्क का है, और यही मिजाज हमें अल्लाह ताला एज अ मुस्लिम बताता है। फिर इसके बाद आयत नंबर 110, उम्मत की जिम्मेदारियाँ। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, क्या पता चला कि अल्लाह ने तुम्हें लोगों के लिए निकाला, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और खुद भी अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये टाइटल नहीं है, ये जिम्मेदारी है। तो खैर उम्मत होने के लिए जिम्मेदारियों की अदायगी भी लाजिम है। आज जिल्लत और रुसवाई की बुनियादी वजह इन जिम्मेदारियों की अदम अदायगी है। काम किए बगैर अवार्ड्स नहीं मिलते, टाइटल मिल जाते हैं लेकिन फिर वो छिन भी जाते हैं जब उस काम का हक अदा न किया जाए। तो कोई अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करे। फिर आयत 159, अमीर और जिम्मेदारों के लिए हिदायत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को यहाँ मेरे आपके लिए रोल मॉडल बना दिया कि अगर आपको अल्लाह ने चुन ही लिया है इस काम के लिए कि आपके साथ कुछ लोग मिलकर दीन के पौधे में पानी डाल सकते हैं, तो अपना अखलाक अच्छा कीजिए। फबिमा रहमत मिनल्लाहि लिंत लहुम वलो कुन तफज्जन गलीज़ल क़ल्बी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मेहरबानी से आप अपनी तबीयत के एतबार से नरम हैं, और अगर आप बदखू और सख्त दिल होते, यानी जुबान पे सख्त लफ्ज़ रखते और दिल में सख्ती होती, तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। क्या पता चला कि लीडर के लिए ये खूबियाँ, जिसको अलामा इकबाल ने भी कहा था, सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। और उससे पिछले मिसरे में कह दिया, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। तो क्या पता चला कि नरमी इख्तियार करनी है, शफकत अपने अंदर लानी है और दुआ का एहतमाम करना है। फिर इसी में हमें मशरे में शरीक होने और करने का भी मशवरा मिला, और अल्लाह पर तवक्कुल की बात। और फिर आयत 160, अल्लाह की मदद को लाने वाली चीज़ें। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, और अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है कि तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। तो अल्लाह की मदद के हसूल का जरिया इसके दीन की नुसरत करना है। यही पैगाम सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 17-17 में हम पढ़ेंगे। ज़रा सा इस पे गौर कीजिए, क्या वाकई हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं? कौन है आप मेरे समेत जो अल्लाह की मदद हासिल करना नहीं चाहता? तो उसके लिए कोई वजीफा नहीं है, उसके लिए कोई चिल्लाकशी नहीं है, उसके लिए यह है कि उसके दीन के लिए निकल जाइए। घरों में रहकर भी काम कर सकते हैं। अल्लाह की मदद आती है अल्लाह के काम करने वालों पे। आप देखिए कि एक औरत है, दरवाज़ा खोलती है, दो खवातीन उसके सामने हैं। एक कहती है 10 रुपये दे दें, भीख मांगनी है, ये है वो है। वो उसको दे के फारिग करती है। दूसरी अंदर आती है, कहती है आपके इस बच्चे को ज़रा सा देख लूँ। वो उसके बच्चे को नहलाती धुलाती खाना पकाती, बच्चा उससे बहुत फेमिलियर होता है। क्या ये माँ इस आने वाली औरत को जाने देगी? वो कहेगी आपको अगर जॉब करनी है तो आइए, मैं आपको मेड रख लेती हूँ। आपके बच्चे को कोई देखे तो आपको उस पर इतना प्यार आए कि आप उसको जाने ही ना दें। और अगर आप सही नीयत से और सही तरीके से अल्लाह के दीन की मदद करें तो क्या हो सकता है कि अल्लाह आपकी मदद ना करें? तो अल्लाह ताला हमें ये सबक याद करवा दें। फिर आयतन 200, जहाँ पे सूरत पूरी होती है, जामे हिदायत हैं, कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरी उम्मत को जोड़ने का पैगाम है असल में। क्योंकि सूरत आले इमरान में बहुत ही बात हुई इस पे, तफरकेबाजी पे, इख्तलाफात पे, और भगदड़ मच गई और ये वो। तो कहा आओ टूटी हुई उम्मत को जोड़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए अहले ईमान, कुफार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो। तो क्या पता चला, सब्र, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ सब्र का जो रंग है वो दीन पे अमल का सब्र है। और साबिरू मुसाबरा, एक दूसरे को थामना होता है। दूसरों के मुकाबले पे सब्र करो, एक से बढ़कर सब्र करो, और दूसरों की तरफ से आई हुई बातों पे सब्र करो, और फिर जमे रहो, राबितू राबते रखो, नज्म की पाबंदियां करो। क्या पता चला इस सूरत ने जो पैगाम दिया आपको मुझे कि उम्मत जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगी, दिल जो दूर है उनको करीब नहीं लाया जाएगा, तो उम्मत के पौधे पे बहार नहीं आएगी।